लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग मानवीय रिश्तों की जगह न ले, व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करे तथा हमें अपने समय के संकटों का सामना करने में मदद प्रदान करे। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवार ये आराधना विधि चिंतन भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, मानव जीवन एक तीर्थ यात्रा है और हम में से हर कोई इस जीवन में एक तीर्थ यात्री की तरह है। हमारे जीवन का यह तीर्थ जन्म से शुरू होता और मृत्यु में खत्म होता है। हम रोज दिन भोर होने से रात के सोने तक अपने जीवन में एक निश्चित दूरी की तीर्थ यात्रा पूरी करते हैं। एक तीर्थ यात्री की भांति यदि हम अपनी चेतना में इस जीवन को जीते तो रोज दिन की अपनी यात्रा पूरी करते हुए हम निश्चित तौर पर अपने में एक संतुष्टि का अनुभव करते हैं, जो हमें अपने हृदय में होने वाले आनंद और खुशी से होती है। वहीं अपने जीवन को अचेतना में जीना, जहां हम अपने को शायद जीवन की छोटी बड़ी मुसीबतों में ही खोया और उलझा पाते हैं, हमारे जीवन की अनुभूतियों में कड़वाहट और खट्टेपन का स्वाद लाती है। इसका परिणाम यह होता है कि जीवन की सारी चीजों को हम एक प्रकार से बोझ स्वरूप देखते और लेते हैं, जिन्हें पूरा करने में हमें कठिनाई और एक तनाव की अनुभूति होती है। हम उन्हें अनमने और चिड़चिड़े ढंग से पूरा करते हैं, जो किसी के लिए खुशी का कारण नहीं बनती है। श्रोताओं, आज माता कलिसिया खजूर रविवार का त्योहार मनाती है, जहां हम मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त का यरूशलेम शहर में अपने पिता के पवित्र शहर में एक विजयी राजा के रूप में प्रवेश करने की यादगारी मनाते हुए उनकी जय जयकार करते और महिमा गाते हैं। आइए हम खजूर रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए यीशु के यरूशलेम शहर प्रवेश करने की गाथा को सुने। हम अपने में चिंतन करते हुए यह पूछें, यीशु का यरूशलेम शहर में इस भांति महिमा में प्रवेश करने का अर्थ क्या है? वे ऐसा क्यों करते हैं? क्या यीशु का यरूशलेम प्रवेश करने की निर्भयता हमें अपने जीवन के यरूशलेम में भय विहीन प्रवेश करने को मदद करती है?
जब यीशु जैतून पहाड़ के समीप बेतफगे और बेथानिया के निकट पहुँचे तो उन्होंने दो शिष्यों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचकर तुम एक बछेड़ा बंधा हुआ पाओगे जिस पर अब तक कोई नहीं सवार हुआ है, उसे खोलकर यहां ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि तुम उसे क्यों खोल रहे हो तो उत्तर देना, प्रभु को इसकी जरूरत है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर यीशु ने जैसा कहा था वैसा ही पाया। जब वे बछेड़ा खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे कहा, इस बछेड़े को क्यों खोल रहे हो? उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु को इसकी जरूरत है। वे बछेड़ा यीशु के पास ले आए और उस बछेड़े पर अपने कपड़े बिछाकर उन्होंने यीशु को उस पर चढ़ाया। ज्यों-ज्यों यीशु आगे बढ़ते जा रहे थे, लोग रास्ते पर अपने कपड़े बिछाते जा रहे थे। जब वह जैतून पहाड़ की ढाल पर पहुँचे तो पूरा शिष्य समुदाय आनंद विभोर होकर आंखों देखे सब चमत्कारों के लिए ऊंचे स्वर से इस प्रकार ईश्वर की स्तुति करने लगा, धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम पर आते हैं, स्वर्ग में शांति, सर्वोच्च स्वर्ग में महिमा। भीड़ में कुछ फरीसी थे, उन्होंने येसु से कहा, गुरुवर अपने शिष्यों को डांटिए। परंतु येसु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि वे चुप रहें तो पत्थर ही बोल उठेंगे।
श्रोताओं, सुसमाचार के सुमधुर वचनों का श्रवण हमें येसु के संग यरूशलेम शहर में प्रवेश करने और उनके संग समय व्यतीत करते हुए उनके दुख भोग में शामिल होने को प्रेरित करे, जिससे हम पुण्य सप्ताह में मिलने वाली आशीष और कृपा दानों के हकदार बन सकें। श्रोताओ, नबी इसायस के ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमारे लिए दुखित सेवक के सबल मानसिक स्थिति का जिक्र करता है। धर्म ग्रंथ का दुखित और प्रताड़ित सेवक और कोई नहीं बल्कि स्वयं येसु ख्रिस्त हैं, जो अपने अत्याचारियों के प्रति अपना मुख और कान बंद कर लेते और सब कुछ सह लेते हैं। उनका अपमान किया गया, उनके ऊपर थूका गया, उन्हें मारा पीटा गया और उनकी दाढ़ी नोची गई, लेकिन उन्होंने ऐसा करने वालों का तनिक भी विरोध नहीं किया। वे अपने कष्ट, पीड़ा और अपमान की स्थिति में एकदम धैर्यवान और सहनशील बने रहे। श्रोताओ, यह हमें अपने व्यक्तिगत जीवन पर चिंतन करने का आह्वान करता है कि हम अपने अपमान और प्रताड़ित किए जाने की स्थिति में किस तरह का व्यवहार और प्रतिक्रिया दिखलाते हैं। आज की परिस्थिति में मजाल है कि कोई किसी को अपमानित और भला बुरा कहे। हमारे संग ऐसा होने पर हम निश्चित ही ईंट का जवाब पत्थर से देने की चाह रखते हैं, लेकिन यीशु ख्रिस्त ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वे हम सबों के खातिर अपने प्रेम को एक विशेष रूप में प्रकट करने की चाह रखते हैं। वे हमारे लिए सारी चीजों को अपने ऊपर लेते और हमें नम्रता और दीनता की शिक्षा देते हैं। फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया आज का दूसरा पाठ हमारे लिए पुनः इस बात पर प्रकाश डालते हुए कहता है कि वे ईश्वर के पुत्र थे और सारी चीजों में ईश्वर की बराबरी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा करने के बदले दास का रूप धारण किया और अपने मरण तक, हाँ क्रूस के घोर अपमानित मरण तक अपने को आज्ञाकारी बना लिया, और इसके कारण पिता ने उन्हें सारी चीजों के ऊपर महान बना दिया। उन्होंने उन्हें वह नाम प्रदान किया जो सारी चीजों में श्रेष्ठ है, जिसके आगे दुनिया की सारी चीजें नतमस्तक होती हैं। श्रोताओं, आज के सुसमाचार में हमने यीशु को एक नम्र और दीन राजा की भांति लद्दू जानवर गधे की सवारी करते हुए पवित्र शहर यरूशलेम में प्रवेश करते हुए सुना। यीशु का यरूशलेम अपने पिता के पवित्र नगर में प्रवेश करना समय की पूर्णता को व्यक्त करती है, जहां वे अपने पिता के द्वारा दिए गए प्रेरित कार्य को पूरा करने हेतु स्वेच्छा से पवित्र नगर में प्रवेश करते हैं। वे एक राजा, पुरोहित और बलि के मेमने की भांति उस कार्य के निर्वहन हेतु आगे बढ़ते हैं, जिससे उन्हें सारी मानव जाति की मुक्ति के लिए पूरा करना था। यीशु को इस बात का पता था कि उनके विरोधी उसे मार डालने के फिराक में हैं, लेकिन वे इसकी परवाह नहीं करते बल्कि हमारे लिए आगे बढ़ते हैं। श्रोताओं, निष्ठा में प्रेम किसी भी तरह के भय, शंका और प्रतिकार से अपने को आगे ले चलता है, जिसे हम यीशु ख्रिस्त में पाते हैं। अपने पिता और मानवता के खातिर प्रेम में वे अपने को पूरी तरह से निछावर कर देते हैं। सच्चे प्रेम में हम कोई भी दोष और अवगुण नहीं पाते हैं। यीशु का प्रेम हमारे लिए सच्चा प्रेम है, जहां हम उनके एक सबसे बड़े गुण अर्थात नम्रता को पाते हैं। नम्रता में हम सारी चीजों को, चाहे वे व्यक्ति और बुरी घटनाएं ही क्यों ना हों, वे जैसे हैं हम उन्हें वैसे ही अपने लिए स्वीकारते हैं। यह हमें अपने जीवन की तीर्थ यात्रा में विकसित और परिपक्व होने की बात घोषित करता है। श्रोताओं, हम सबों का एक अपना ही यरूशलेम शहर है, जहां हम साहस के साथ प्रवेश करने और ईश्वर से मिली प्रेरिताई को पूरा करने हेतु बुलाए गए हैं। यह हमें अपने जीवन को चेतना में जीने की मांग करता है जो हमारा अपने हृदय की गहराई में उतरना और स्वयं के संग एक तीर्थ यात्रा करना है। अपने व्यक्तिगत तीर्थ यात्रा करने के द्वारा हम अपने सोच विचार मनोभावों अपने बात व्यवहार करने के तौर तरीकों से वाकिफ होते हैं जो हममें नवीनता लाती और हम दूसरों के लिए अपने पड़ोसियों और सारी दुनिया के लिए आशा के एक नए तीर्थ यात्री बनते हैं। आइए हम नवीनता के स्रोत पवित्र आत्मा से निवेदन करें वे हमें इस यात्रा में मदद करें।
राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने शनिवार 12 अप्रैल को शिमला और चंडीगढ़ धर्म प्रांत की प्रेरितिक देखभाल से धर्माध्यक्ष इग्नासियस लोयला इवान मस्करनहास द्वारा प्रस्तुत त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है और उनके स्थान पर धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष के रूप में सहाय थदेयुस थॉमस को नियुक्त किया है। वर्तमान में वे जालंधर स्थित होली ट्रिनिटी मेजर सेमिनरी के रेक्टर हैं। नवनियुक्त धर्माध्यक्ष सहाय थदेयुस थॉमस का जन्म 6 नवंबर 1971 को तमिलनाडु के कोट्टार धर्म प्रांत के चिन्नाविलाई में हुआ। लखनऊ के संत पॉल माइनर सेमिनरी में शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने जालंधर के होली ट्रिनिटी मेजर सेमिनरी में दर्शन शास्त्र और धर्म शास्त्र का अध्ययन किया। 13 मई 2001 को उनका पुरोहिताभिषेक किया गया। उन्होंने ऑस्ट्रिया के वियना विश्वविद्यालय से धर्मशास्त्र में लाइसेंसिएट और पवित्र शास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय पटियाला से पत्रकारिता और जनसंचार में स्नातकोत्तर तथा भारतीय मानवाधिकार संस्थान नई दिल्ली से मानवाधिकार में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की। और संत पापा ने आज दुमका धर्म प्रांत के सहायक धर्माध्यक्ष के रूप में फादर सोनातान किस्कू को नियुक्त किया जो अब तक दुमका धर्म प्रांत के विकर जनरल और संत मरिया पल्ली के पल्ली पुरोहित हैं। नवनियुक्त धर्माध्यक्ष सोनातान किस्कू का जन्म 15 मई 1969 को दुमका धर्म प्रांत के कौदिया में हुआ था। 15 अप्रैल 2002 को उनका उसी धर्म प्रांत के लिए पुरोहिताभिषेक किया गया। लखनऊ में संत पॉल माइनर सेमिनरी में अध्ययन करने के बाद उन्होंने कलकत्ता के मॉर्निंग स्टार कॉलेज में दर्शन शास्त्र और पुणे के पेपल सेमिनरी में धर्म शास्त्र का अध्ययन किया। उन्होंने रोम स्थित पोंटिफिकल उर्बानियाना विश्वविद्यालय से कैनन लॉ में लाइसेंस प्राप्त किया। उधर संत पापा फ्रांसिस ने रोम में अपने वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए एकत्रित हुए ओपुस देई विश्वविद्यालय के छात्रों को एक पत्र लिखकर आध्यात्मिक प्रोत्साहन दिया। सेमिनार शनिवार 12 अप्रैल को शुरू हुआ और 20 अप्रैल ईस्टर रविवार तक चलेगा। स्पानी भाषा में लिखे अपने संदेश में संत पापा ने कहा कि इस वर्ष का संस्करण एक महत्वपूर्ण क्षण पर पड़ रहा है जो आशा को समर्पित पवित्र वर्ष और संत जोस मारिया एस्क्रिवी डी बालगुएर के पुरोहिताभिषेक की 100वीं वर्षगांठ दोनों के साथ मेल खाता है, इसलिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। संत पापा ने पत्र में लिखा, मैं आपकी खुशी में शामिल होता हूं और अपनी प्रार्थनाओं में आपके साथ हूं। प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि तीर्थ यात्रा और भाईचारे की मुलाकात का यह समय आपको यीशु मसीह के सुसमाचार को सभी तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करे, जो मर गए और फिर जी उठे, आशा के संदेश के रूप में अपने वादे को पूरा करते हैं, महिमा की ओर ले जाते हैं और प्यार पर आधारित है जो निराश नहीं करती। संत जोस मरिया स्क्रीवी द्वारा 1968 में स्थापित UNIV कांग्रेस दुनिया भर के छात्रों के बीच बौद्धिक और आध्यात्मिक आदान प्रदान करने का एक मंच के रूप में कार्य करती है। 2025 संस्करण, जिसका विषय हम विश्व के नागरिक हैं, 25 देशों और 32 विश्वविद्यालयों से 2000 से अधिक छात्रों को एक साथ लाता है। पवित्र सप्ताह के दौरान छात्र शैक्षणिक सत्रों, सांस्कृतिक अनुभवों, प्रार्थना के क्षणों में भाग लेंगे। उधर लोयोला यूनिवर्सिटी शिकागो और रोम के पोंटिफिकल ग्रेगोरियन यूनिवर्सिटी ने मिलकर वैश्विक प्रवासन और कानून के शासन पर एक सम्मेलन आयोजित किया है, जो 11 और 12 अप्रैल को रोम में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के एक वेब पेज पर लिखा गया है, आज दुनिया भर में 281 मिलियन से ज्यादा लोग अपने जन्म से देश से बाहर रह रहे हैं, जबकि लाखों अप्रवासी उनके मूल देश और मेजबान देश प्रवासन से लाभान्वित हुए हैं। आज प्रवासन का विषय दुनिया भर में कई जगहों पर, खास तौर पर वैश्विक उत्तर में, एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। यह सम्मेलन प्रवासन संकट के ऐतिहासिक कारणों, समकालीन तनावों को बढ़ाने और प्रभावी प्रवासन नियंत्रण के साथ कानून के शासन के सिद्धांतों को फिर से परिभाषित करने की चुनौतियों की पड़ताल करता है, जो संत पापा फ्रांसिस की बाइबल की इस चेतावनी की याद दिलाता है कि तुम किसी अजनबी के साथ अन्याय नहीं करोगे या उस पर अत्याचार नहीं करोगे। वक्ताओं में लोयोला शिकागो और ग्रेगोरियन यूनिवर्सिटी दोनों के अकादमिक स्टाफ शामिल हैं। लोयोला यूनिवर्सिटी शिकागो मध्य पश्चिमी अमेरिकी शहर में स्थित एक जेसुइट संस्थान है और इसकी स्थापना 1870 में हुई थी। पोंटिफिकल ग्रेगोरियन यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना 1551 में लोयोला के संत इग्नासियस ने की थी, भी एक जेसुइट संस्थान है और यह कलीसिया संबंधी डिग्री प्रदान करता है। उधर म्यांमार में हालिया भूकंप के बावजूद सैन्य जुंटा और प्रतिरोध बलों के बीच लड़ाई जारी रहने के कारण सेना ने चिन राज्य के फलाम शहर में ख्रीस्त राजा गिरजा घर पर बमबारी की। नियमित सेना द्वारा हवाई हमलों ने म्यांमार के एकमात्र ईसाई बहुल राज्य चिन में एक और कैथोलिक गिरजा घर को नष्ट कर दिया। यह देश में सैन्य जुंटा और प्रतिरोध बलों के बीच चल रहे गृह युद्ध का एक दुखद परिणाम है, जो ख्रिस्तियों और उनके पूजा स्थलों को गंभीर रूप से प्रभावित करता रहा है। हाखा के धर्म प्रांत के फालम शहर में ख्रिस्त राजा गिरजा घर पर 8 अप्रैल को हमला किया गया था। फिडेस एजेंसी के स्थानीय स्रोतों के अनुसार गिरजा घर की छत और अंदरूनी हिस्सा तबाह हो गया, लेकिन इमारत की दीवारें अभी भी खड़ी हैं। गिरजा घर को हाल ही में स्थानीय कैथोलिक समुदाय के लगभग 1000 अनुयायियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत त्याग के साथ बनाया गया था। इसे नवंबर 2023 में पूजा अर्चना के लिए खोला गया था। फरवरी में म्यांमार की सेना ने हवाई हमले किए और चिन राज्य के मिडंत में येसु के पवित्र हृदय कैथोलिक गिरजाघर को नुकसान पहुंचाया, जिसका उद्देश्य 25 जनवरी को संत पापा फ्रांसिस द्वारा बनाए गए मिंडत के नव स्थापित धर्म प्रांत का गिरजाघर बनना था। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।